ऐ अब्दुल लतीफ़, तेरे पर हज़ार रहमतें कि तूने मेरी ज़िंदगी में अपने सिद्क का नमूना दिखाया। हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत साहिबज़ादा अब्दुल लतीफ़ साहिब, प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें मुल्क अफ़ग़ानिस्तान के एक शहज़ादे की सच्ची कहानी सुनाते हैं। आज से 150 साल पहले की बात है, अफ़ग़ानिस्तान के सूबा खौस्त के एक गांव सैयदगाह में एक बच्चा पैदा हुआ। माँ बाप ने उसका नाम मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ रखा, जो बाद में शहज़ादा अब्दुल लतीफ़ मशहूर हुए। आप हज़रत दाता गंजबख्श रहमहुल्लाह की औलाद में से थे और आपके बुज़ुर्ग हिंदुस्तान से हिजरत करके अफ़ग़ानिस्तान जाकर आबाद हुए थे। आप सैयद थे, इसलिए आपके गांव का नाम भी सैयदगाह पड़ गया। इस इलाके में आपका ख़ानदान फैलता रहा और आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़े ज़िम्मेदारों में शुमार होने लगा। उस ज़माने में इस ख़ानदान की कुल जायदाद 30,000 एकड़ के करीब थी, जिसकी कीमत उस वक्त भी कई लाख रुपए थी। अफ़ग़ानिस्तान की हुकूमत भी इस ख़ानदान को इज़्ज़त की निगाह से देखती थी और अफ़ग़ानिस्तान के बादशाह अमीर अब्दुर्रहमान की तरफ से इस ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग को पेंशन भी मिलती थी। इस घराने के लोग साहिबज़ादा के लक़ब से याद किए जाते थे। हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम आपको शहज़ादा लिखते थे, इसलिए इस कहानी में हम आपको शहज़ादा ही कहेंगे। ये ख़ानदान दीनी लिहाज से भी बहुत मशहूर था। मेहमान नवाजी इनकी ख़ास ख़ूबी थी और इनके इल्म दीन की सारे इलाके में शोहरत थी। शहज़ादा अब्दुल लतीफ़ साहेब इस अमीर ख़ानदान में पैदा हुए। घर में अल्लाह का दिया सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी ना थी, लेकिन शहज़ादा साहेब को बचपन से ही दुनिया की बजाय दीन के कामों से ज़्यादा मोहब्बत थी। आप ख़ुद कहा करते थे कि मुझे बचपन से ही दुरूद पढ़ने का बहुत शौक़ था और इसके पढ़ने से मुझे बहुत मज़ा आता था। शहज़ादा साहिब ने इब्तदाई तालीम अपने इलाका खौफ में ही हासिल की, फिर ज़्यादा तालीम के लिए पेशावर आए और यहाँ कई साल रहकर बड़े बड़े उस्तादों और आलिमों से पढ़ते रहे। इसके बाद आप लखनऊ आए और बाज़ और शहरों के मुख्तलिफ दीनी मदरसों में इल्म सीखते रहे। लखनऊ के मशहूर आलिम मौलवी अब्दुल हई लखनवी साहिब भी आपके उस्ताद थे। इनको शहज़ादा साहिब से बहुत प्यार था। एक दफ़ा मौलवी साहिब के शागिर्दों ने इनसे शिकायत की कि आप शहज़ादा साहिब से बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं। मौलवी साहिब ने जवाब दिया, ये इस वजह से प्यारे लगते हैं कि इनका नाम भी लतीफ़ है और ज़हन भी लतीफ़, यानी बहुत ज़हीन है। हिंदुस्तान में कई साल रहकर इल्म हासिल करने के बाद जब आप वापस अपने मुल्क अफ़ग़ानिस्तान गए तो आपकी शादी अपनी एक रिश्तेदार शाहजहाँ बीबी से कर दी गई, जो बड़ी नेक और नमाज रोज़े की पाबंद थी। शादी के कुछ अरसे बाद शहज़ादा साहिब ने इल्म के शौक़ में दोबारा हिंदुस्तान का सफ़र किया और दिल्ली और लखनऊ के बड़े बड़े मदरसों में जाकर इल्म हासिल किया। उस ज़माने में आपके घर वाले ख़ास आदमी खौस्त से हिंदुस्तान भेजते थे, जो आपको ज़रूरत के लिए ख़र्च वग़ैरह दे जाया करते थे। हिंदुस्तान से आला दीनी तालीम हासिल करने के बाद जब आप वापस वतन तशरीफ़ लाए तो अपने गांव में कुरान और हदीस का दर्स शुरू किया। लोग दूर दूर से आपके पास पढ़ने के लिए आने लगे और आपकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। आपने अपनी बैत के इर्द गिर्द कमरों में तालिबे इल्मों के रहने का इंतज़ाम भी किया हुआ था और उनको खाना भी आप मुफ्त देते थे। इन पढ़ने वालों की तादाद 30-40 के करीब होती थी। इनके अलावा बहुत से मेहमान, मुसाफिर, गरीब लोग और आपके मुरीद आपके घर से खाना खाते थे। कहते हैं एक दिन खाना खाने वालों की तादाद कम होकर 80 रह गई तो शहज़ादा साहिब बहुत सोचने लगे कि इसकी क्या वजह है। आपने अपने ख़ानदान के लोगों को इकट्ठा किया कि दुआ करें अल्लाह ताला मेहमानों और मुसाफिरों की ये तादाद बढ़ा दे। जब कभी इलाके में कहत पड़ता तो आप अपनी सारी गंदम ज़रूरतमंद गरीब लोगों में तकसीम करवा देते। आप बहुत बड़े आलिम थे। आपकी अपनी लाइब्रेरी थी जिसमें तफसीर, हदीस, फ़िका और तारीख़ की बड़ी बड़ी और पुरानी किताबें मौजूद थीं। आपको किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक़ था, बाज़ दफ़ा सारी सारी रात पढ़ते रहते थे। आपकी इन खूबियों की वजह से कई लोग आपके मुरीद हो गए, जिनकी तादाद 50,000 के करीब बताई जाती है। आपको लोग साहिबजादा और शहजादा के लकब से याद करते थे। प्यारे बच्चों, उस वक्त मुल्क अफ़गानिस्तान पर बादशाह अब्दुर्रहमान हुकूमत करता था। जब आपकी शोहरत बादशाह ने सुनी तो उसने आपको दारुल हुकूमत काबुल में बुलवा भेजा। आप आकर बादशाह से मिले तो इस पर आपके इल्म और बुजुर्गी का बहुत असर हुआ और वो आपके अच्छे ख्यालात और ख़ूबसूरत बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने मुल्क में मज़हबी मशवरों के लिए आपको मुशीर और अपने बेटे हबीबुल्लाह खान का उस्ताद मुकर्रर किया। बादशाह पर आपके इल्म का इतना असर था कि उसने एक मरतबा आपके बारे में लिखा कि काश हमारे 3-4 और ऐसे आदमी होते जो साहिबजादा साहिब जैसा इल्म रखते। बादशाह के कहने पर आपने बीवी बच्चों को भी खौफ से काबुल बुलवा लिया और यहीं रहने लगे। सन 1894 ईस्वी में अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान की सरहदें मुकर्रर करने के लिए दोनों मुल्कों की तरफ से कुछ अफसर मुकर्रर हुए थे। अफ़गानिस्तान के इस वफद का सबसे बड़ा अफसर बादशाह का चचा सरदार शेर यंदल खान था और इसके नायब शहजादा साहिब थे। बादशाह खुद फ़ौज के साथ उनको शहर से बाहर काफ़ी दूर तक छोड़ने के लिए आया। शहजादा साहिब ने इस काम में हुकूमत अफ़गानिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर बहुत अहम खिदमात अदा की। इस मौके पर शहजादा साहिब की दोनों मुल्कों के अफसरों के साथ यादगारी तस्वीरें भी मौजूद हैं। जब अफ़गानिस्तान का बादशाह अब्दुर्रहमान फौत हुआ और उसके बेटों में से किसी को बादशाह बनाने का सवाल पैदा हुआ तो शहजादा साहिब के मशवरे से तजवीज़ हुई कि बादशाह के बड़े बेटे अमीर हबीबुल्लाह खां को तख्त पर बिठाया जाए, जो अपने दूसरे भाइयों के निस्बत ज़्यादा आलिम और इंसाफ पसंद था। इस मौके पर एक बहुत शानदार दरबार लगा जिसमें दूर दूर से लोग आकर शामिल हुए। हुकूमत अफ़गानिस्तान के तरीके के मुताबिक मुल्क के सबसे इज्जत वाले और बड़े आदमी ने बादशाह के सर पर पगड़ी बांधकर ताजपोशी की रस्म अदा करनी थी। इस काम के लिए बादशाह ने सारे मुल्क में से शहजादा साहिब को चुना और 3 अक्टूबर 1902 को शहजादा साहिब ने बादशाह को शाही ताज पहनाया। शहजादा साहिब सच बात कहने वाले और नडर इंसान थे। जब अमीर हबीबुल्लाह खान बादशाह बन गया तो तमाम लोगों ने बादशाह की बैत की। बादशाह ने शहजादा साहिब को भी बुला भेजा कि वो भी बैत करें तो आपने बड़ी बहादुरी से बादशाह को कहा, मैं इस शर्त पर बैत करूंगा कि आप शरीयत यानी इस्लाम के हुक्मों के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। आप इतने दलेर इंसान थे कि बादशाह के सामने भी सच्ची बात कहने से नहीं रुके। प्यारे बच्चों, अब हम तुम्हें बताएंगे कि शहजादा साहिब अहमदी किस तरह हुए। ये तो हम बता चुके हैं कि शहजादा साहिब बहुत बड़े और मशहूर आलिम थे। आपने हदीसों में ये बात पढ़ी थी कि आखिरी ज़माने में जब मुसलमान गुमराह हो जाएंगे तो अल्लाह ताला इनकी हिदायत के लिए महदी अलैहिस्सलाम को भेजेगा। आपने ज़माने के हालात और निशानियों से अंदाज़ा कर लिया था कि ये वही ज़माना है। आप इस बात का ज़िक्र अपने दरसों और तकरीरों में भी किया करते थे। आप बड़े बुज़ुर्ग इंसान थे और अक्सर आपको सच्ची ख्वाबें भी आती थीं। अल्लाह ताला ने आपको ख्वाब में भी कई दफ़ा बताया था कि इमाम महदी आ गया है। इस पर आपने दुआ और कोशिश से महदी अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू की। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली और जल्द ही आपको इमाम महदी का पता चल गया। ये वाक़या भी बहुत दिलचस्प है। 1894 ईस्वी की बात है। शहजादा साहिब हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहदों का फ़ैसला करने वाले अफसरों में अफ़गानिस्तान की तरफ से सरकारी नुमाइंदा थे। दोनों मुल्कों के अफसर दिन के वक्त तो अपना अपना काम करते और शाम के वक्त एक जगह खैमों में इकट्ठे होकर एक दूसरे की दावत करते और बातचीत होती। हिंदुस्तान के वफद के साथ पिशावर के एक अहमदी क्लर्क सैयद चंद बादशाह साहिब भी थे। एक दिन बातों बातों में उन्होंने ज़िक्र किया कि कादियान में हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने मसीह माऊद और महदी होने का दावा किया है। शहजादा साहिब तो पहले ही तलाश में थे। आपने इस बारे में कई सवाल चंद बादशाह साहिब से किए और इनसे काफ़ी मालूमात हासिल की। यह शौक़ देखकर चंद बादशाह साहिब ने शहजादा साहिब को हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम की किताब आईना कमालात इस्लाम पढ़ने के लिए दी। शहजादा साहिब बहुत खुश हुए और कुछ रकम चंद बादशाह साहिब को इनाम भी दी। शहजादा साहिब खुद बताते हैं कि मैंने रात को किताब पढ़नी शुरू की, सारी रात सो ना सका और सुबह तक किताब का काफ़ी हिस्सा पढ़ लिया। ये किताब पढ़कर मेरे दिल ने हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम के दावे को कबूल कर लिया और मुझे बहुत खुशी हुई। आपने ये किताब अपने ख़ास आदमियों को सुनाकर फरमाया, ये वही शख्स है जिसका दुनिया इंतज़ार कर रही थी, अब वो आ गया है। और मैंने हर तरफ देखा, ज़माने को एक इस्लाह करने वाले शख्स की ज़रूरत थी लेकिन कोई नज़र नहीं आता था। लेकिन इस किताब के पढ़ने से मालूम हुआ है कि खुदा ने उसे भेज दिया है। ये वही है जिसके मुतालिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था कि जहाँ भी आए उसकी तरफ दौड़ो और उसे मेरा सलाम पहुँचाओ। इसलिए मैं ज़िंदा रहूँ या मर जाऊँ, जो मेरी बात मानता है उसको मैं वसीयत करता हूँ कि वो ज़रूर इस शख्स के पास जाए और इसको मान ले। शहजादा साहब जब वापस काबुल गए तो अपने ख़ास शागिर्दों को कादियान में हालात देखने के लिए भिजवाना शुरू किया। दिसंबर 1900 में शहजादा साहब ने मौलवी अब्दुलरहमान साहब को अपने कुछ और शागिर्दों के साथ हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम के पास अपनी बैत का ख़त देकर भेजा। नीज़ हजूर अलैहिस्सलाम के लिए बहुत खूबसूरत और कीमती कपड़े तोहफा भिजवाए। शहजादा साहिब के ख़ास शागिर्द मौलवी अब्दुलरहमान साहिब आपके कहने पर कई दफ़ा कादियान गए थे और ख़ुद भी हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम की बैत करके जमात अहमदिया में दाखिल हो चुके थे। 1900 में आप आखिरी बार कादियान गए। वापसी पर आप हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम की कुछ किताबें भी साथ लेकर आए। बादशाह को किसी ने इनकी शिकायत कर दी कि मौलवी अब्दुलरहमान साहिब बग़ैर इजाज़त कादियान गए थे। बादशाह ने इनको गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया और ये मामला मौलवियों के सुपुर्द कर दिया। उन्होंने मौलवी अब्दुलरहमान साहिब पर कुफ्र का फतवा लगाया और कत्ल करने की राय दी। इस पर आपको कैद कर लिया गया और बाद में कैद के दौरान ही गले में कपड़ा डालकर सांस बंद करके राह मौला में कुर्बान कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैही राजिऊन। जब अमीर अब्दुलरहमान के बाद इनका बेटा हबीबुल्लाह खान बादशाह बना तो शहजादा साहिब ने बादशाह से हज पर जाने की इजाज़त मांगी। नए बादशाह ने, जो आपका शागिर्द भी था, खुशी से इजाज़त दी और कई ऊँट घोड़े और नकद इनाम देकर आपको काबुल से रवाना किया। शहजादा साहिब अपने वतन से होते हुए बन्नू के रास्ते हिंदुस्तान आए। इस सफ़र में आपके कुछ शागिर्द भी साथ थे। अटक के करीब एक जगह पर शहजादा साहिब की एक आदमी से हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बात हुई। ऐसा मालूम होता था कि उसने हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम को मान लिया है और इस बात पर वो खुश लगता था। शहजादा साहिब ने अपनी सवारी का घोड़ा उसे इनाम दे दिया। जब आप लाहौर पहुँचे तो मालूम हुआ कि ताउन की बीमारी फैलने और बाज़ और बातों की वजह से हज पर जाने में कुछ रौके पैदा हो गई हैं। इसलिए आपने लाहौर में ठहरने के बजाय कादियान जाकर हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम से मिलने का इरादा किया। शहजादा साहिब लाहौर से बटाला आए और बटाले से पैदल चलकर कादियान पहुँचे। सबसे पहले हज़रत मौलाना हाफिज़ नूरुद्दीन साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो जमात के पहले खलीफा हुए, से मुलाकात हुई। जहर की नमाज के बाद हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम से मिले। आप ख़त के ज़रिए तो पहले ही बैत कर चुके थे, हुजूर को देखते ही आपके हाथ पर भी बैत की। हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने इनसे पहली दफ़ा मिलने का हाल लिखा। आप अलैहिस्सलाम लिखते हैं, जब मुझसे इनकी मुलाकात हुई तो कसम उस खुदा की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने इनको अपनी पैरवी और अपने दावे की तस्दीक में ऐसा फनाशुदा पाया जिससे बढ़कर इंसान के लिए मुमकिन नहीं। हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा शहजादा साहिब से पूछा कि आपने क्या देखकर मुझे माना, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले कुरान शरीफ ने मुझे ये रास्ता दिखाया। मैंने देखा कि ज़माने के लोग मज़हब से दूर हो गए हैं और शिर्क और कई किस्म के गुनाह करते हैं, और दूसरे मज़हब के लोग इस्लाम पर तरह तरह के एतराज़ कर रहे हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि खुदा की तरफ से कोई मुजद्दिद आए। मैं यही सोचता रहता था कि इन्हीं दिनों में मैंने सुना कि एक शख्स ने कादियान की बस्ती में मसीह मौऊद होने का दावा किया है, और मैंने कोशिश करके आपकी कुछ किताबें लीं और उनको गौर से पढ़ा तो आपकी हर बात को सच्चा और कुरान के मुताबिक पाया, इसलिए मैंने आपको सच्चा मानकर कबूल किया है। शहज़ादा साहिब 1902 में कादियान आए और करीबन 3.5 माह कादियान में रहे। आप रोज़ाना नमाज बाजमात बैत मुबारक कादियान में अदा किया करते थे। आपको कुरान से बहुत मोहब्बत थी। मेहमान खाने में अपने कमरे के बाहर बैठे रहते और कुरान शरीफ की तिलावत करते रहते। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम रोज़ाना सुबह सैर के लिए जाया करते थे। शहज़ादा साहिब भी साथ साथ होते थे। आपको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी और आपका बड़ा अदब करते थे। हजूर के साथ जब सैर से वापस आते तो उस वक्त तक अपने कपड़ों से मट्टी और गर्द साफ नहीं करते थे जब तक ये अंदाज़ा ना कर लेते कि हुजूर ने अंदर जाकर अपने कपड़े झाड़ लिए होंगे। शहज़ादा साहिब ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ जेहलम का एक सफ़र भी किया। हुजूर को एक मुकदमे में गवाही के लिए जनवरी 1903 में जेहलम जाना पड़ा था। जेहलम के स्टेशन पर 10,000 लोगों ने हुजूर का शानदार इस्तकबाल किया। हुजूर 3 दिन जेहलम में रहे और तकरीबन 1,500 लोग बैत करके उन दिनों में अहमदी हुए। 17 जनवरी को जेहलम से हुजूर कचहरी में तशरीफ़ ले गए, जहां उस रोज़ बहुत लोग जमा हो गए थे। हुजूर एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और शहज़ादा साहिब हुजूर के कदमों में बैठे हुए थे। शहज़ादा साहिब ने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि हुजूर, मैंने हमेशा आपकी सच्चाई सूरज की तरह रोशन देखी है, मुझे इसमें कोई शक नहीं, क्या मुझे सवाब होगा? हुजूर ने भी कितना प्यारा जवाब दिया, फरमाया, आपने उस वक्त देखा जब कोई ना देख सकता था, और आपने अपने आप को खतरात में डाल दिया और हर दुख और मुसीबत को इस राह में उठाने के लिए तैयार हो गए, इसलिए अल्लाह ताला आपके अजर को ज़ाय नहीं करेगा। इसी सफ़र का ही वाक़या है कि एक रात शहज़ादा साहिब अपने साथियों के पास आए और कहा, हमें बार बार इल्हाम होता है, सर दे दो, सर दे दो। इस सफ़र से वापसी पर शहज़ादा साहिब चंद रोज़ कादियान में रहे और फिर वतन वापस रवाना हुए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आपके बारे में कहा है कि अगरचे इनको बहुत ज़्यादा दिन मेरे पास रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितना अरसा भी वो यहाँ रहे उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। शहज़ादा साहिब को हज़रत हाफिज़ मौलवी नूरुद्दीन साहिब खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बड़ी मोहब्बत थी और इनका बहुत अदब भी किया करते थे। जब आप वतन वापस जाने लगे तो हज़रत मौलवी साहिब से अर्ज़ किया कि मुझे बुखारी की कोई हदीस पढ़ा दें, और बहुत कहकर बुखारी के 2-3 सफ़े आपसे पढ़े और अपने शागिर्दों से बाद में कहा कि मैंने ये सफ़े इसलिए पढ़े हैं ताकि हज़रत मौलवी साहिब के शागिर्दों में शामिल हो जाऊँ, क्योंकि हज़रत साहिब के बाद ये पहले खलीफा होंगे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से वापसी की इजाज़त लेकर जब शहज़ादा साहिब जाने लगे तो ख़ुद हुजूर और कुछ और लोग बटाले की नहर तक पैदल आपको छोड़ने गए, जो कादियान से 1.5 मील के फासले पर है। जब शहज़ादा साहिब की रुख्सत का वक्त आया तो आप हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर पड़े और दोनों हाथों से हुजूर के पाँव पकड़ लिए और अर्ज़ किया कि मेरे लिए दुआ करें। हज़रत साहिब ने फरमाया, अच्छा, आपके लिए दुआ करता हूँ, मेरे पाँव छोड़ दें। शहज़ादा साहिब जाने के गम और मोहब्बत की वजह से पाँव नहीं छोड़ते थे। तब हज़रत साहिब ने फरमाया कि हुक्म का दर्जा अदब से ज़्यादा है, मैं हुक्म देता हूँ कि पाँव छोड़ दें। इस पर शहज़ादा साहिब ने हुजूर के पाँव छोड़ दिए। मालूम होता है कि शहज़ादा साहिब को खुदा की तरफ से पता चल गया था कि हुजूर के साथ ये इनकी आखिरी मुलाकात है और शायद फिर हुजूर से ना मिल सकें। इस सफ़र में भी शहज़ादा साहिब के साथ इनके चंद शागिर्द थे। शहज़ादा साहिब लाहौर आए और 3-4 दिन एक छोटी सी कोठरी में रहे। कुछ किताबें भी लाहौर से ख़रीदी और फिर रेलगाड़ी से कोहाट गए। लाहौर से कोहाट तमाम रास्ता कुरान शरीफ पढ़ते रहे। कोहाट से एक टमटम यानी दो घोड़ों वाला तांगा किराए पर लेकर आप बन्नू गए। टमटम में भी कुरान शरीफ ही पढ़ते रहे। जब असर की नमाज का वक्त हुआ तो टमटम रुकवा कर नमाज पढ़ाई। इस दौरान बारिश शुरू हो गई मगर आपने मज़े से अपनी नमाज पूरी की। इस सफ़र में रास्ते में खुर्रम एक गांव था, यहां आपने रात सराय में गुजारी। सराय के आदमी से बकरी मंगवा कर ज़िबह कराई, खुद भी खाना खाया और सराय के आदमियों को भी खिलाया। आखिर ये काफ़िला बन्नू पहुंचा, जहां आपकी ज़मीन थी। कुछ दिन यहां ठहरने के बाद आप खौफ रवाना हुए। इस रास्ते में एक गांव दौड़ आया। यहां का नंबरदार शहज़ादा साहिब के आने पर बहुत खुश हुआ और बकरी ज़िबा करके आपकी दावत की। यहां शहज़ादा साहिब ने तकरीर की और नसीहतें फरमाईं। रात आपके गांव के लोगों को आपके आने की खबर हुई तो सुबह होते ही गांव के लोग घोड़ों पर सवार होकर आपको लेने आए और इस तरह घोड़सवारों के इस काफ़िले के साथ आप वापस अपने गांव सैयदगाह पहुँचे। रियासत काबुल में शहज़ादा साहिब की आमद। काबुल जाने से पहले आपने अपने शागिर्द मोहम्मद हुसैन को, जो उस वक्त अफ़गानिस्तान की फ़ौजों का सबसे बड़ा अफसर था, ख़त लिखा कि आप बादशाह से मेरे काबुल आने की इजाज़त लेकर मुझे लिखें ताकि मैं बादशाह के पास हाज़िर हो जाऊं। इजाज़त के बग़ैर इसलिए ना गए कि सफ़र पर जाते हुए बादशाह से हज पर जाने की इजाज़त ली थी मगर हज में रोक पड़ जाने की वजह से नहीं जा सके थे और कादियान चले गए थे। इस ख़त में आपने लिखा कि मैं हज के लिए गया था, सफ़र में उस मसीह मौत को देखने का मौका मिल गया जिसकी फरमाबरदारी खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, इसलिए कादियान ठहरना पड़ा। आपने ये भी लिखा कि मुनासिब वक्त पर ये बातें बादशाह को बता दी जाएं। जब यह ख़त मोहम्मद हुसैन को मिला तो उसने वो ख़त बादशाह को न दिखाया और मुनासिब वक्त की तलाश में रहा, लेकिन इससे पहले बादशाह के भाई सरदार नसरुल्ला खान को किसी तरह इस ख़त का पता चल गया। सरदार नसरुल्ला खान बादशाह का नायब भी था और शहज़ादा साहब का बड़ा मुखालिफ था, इसलिए उसने वो ख़त लेकर बादशाह को शिकायत कर दी। बड़े बड़े सरकारी अहदेदार और अफसर आपके दोस्त थे, शहज़ादा साहब ने उनको भी ख़त लिखे। आपने लिखा कि एक शख्स ने कादियान में मसीह मौद और इमाम महदी होने का दावा किया है, मैंने उसके पास रहकर उसे देखा है और सच्चा पाकर उसे मान लिया है, मेरा मशवरा है कि तुम भी उसे मान लो और खुदा के अजाब से बच जाओ। ये सारे ख़त भी बादशाह के पास पहुंचा दिए गए। बादशाह ने बड़े बड़े मौलवियों को बुलाया और उनकी राय पूछी तो उन्होंने कहा कि काफिर और मुर्तद है। तब बादशाह की तरफ से खौफ के गवर्नर को ये हुक्म भिजवाया गया कि शहज़ादा साहब को गिरफ्तार करके 50 सवारों के साथ यहाँ भेज दो। ये हुक्म बादशाह के भाई नसरुल्ला खान ने खौफ के गवर्नर को भिजवा दिया। शहज़ादा साहब को अपनी गिरफ्तारी और खुदा की राह में कुर्बान किए जाने की इत्तला अल्लाह की तरफ से। शहज़ादा साहब ने भी शहादत के वक्त पेशगोई की थी कि इनके कत्ल के बाद मुल्क पर सख्त तबाही आएगी। चुनाचे जिस दिन शहज़ादा साहिब राह मौला में कुर्बान हुए, उसी रात 9 बजे अचानक एक ज़बरदस्त तूफ़ान आंधी और झक्कड़ का आया जो आध घंटे तक जारी रहा। शहादत से अगले दिन 15 जुलाई 1903 को हैज़े की खौफनाक वबा ने शहर काबुल और इर्द गिर्द के इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। हालांकि आम अंदाजे के मुताबिक अभी 4 साल तक इस बीमारी के आने का कोई इम्कान न था। रोज़ाना हैज़े की वबा से 300-400 आदमी काबुल और इसके इर्द गिर्द मरने लगे और बादशाह के भाई सरदार नसरुल्ला खान की बीवी भी इसी से हलाक हुई, जिसके गम से सरदार नसरुल्ला खान करीबन पागल हो गया, हर वक्त डरा सहमा रहने लगा। फिर अमानुल्ला खान जब अफ़गानिस्तान का बादशाह बना तो इसके हुक्म से सरदार नसरुल्ला खान को क़ैद करके काबुल लाया गया और उसी किले में नज़रबंद किया गया जिसमें शहज़ादा साहिब को रखा गया था। इस सदमे से सरदार नसरुल्ला खान का दिमाग ख़राब हो गया और क़ैद के दौरान ही गला घोंट कर उसे कत्ल कर दिया गया। बादशाह हबीबुल्ला खान भी खुदा के अजाब से ना बच सका और 20 फरवरी 1919 को एक आदमी ने उसे कत्ल कर दिया और वो मौलवी जिन्होंने शहजादा साहिब के खिलाफ फतवा दिया था वो भी अपने बुरे अंजाम से बच ना सके और अपने किए की सज़ा पाई। शहजादा साहिब को हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी। आपने कसीदा फारसी ज़ुबान में हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ़ में लिखा है। इसमें आप हजूर के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहते हैं, आपकी खूबसूरती को देखकर फरिश्ते भी हैरान हैं और जन्नत के खूबसूरत लोग भी, आपके चेहरे के आगे कुछ चीज़ नहीं। आप हमेशा के बादशाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से दुनिया के इमाम बनकर आए हैं और आपने अपने कलाम के ज़रिए से ऐसी बातें बयान की हैं जो पहले छुपी हुई थी। हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम को भी शहजादा साहिब से बहुत मोहब्बत थी। शहजादा साहिब की शहादत के बाद हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने ख़ास तौर पर आपके मुतालिक एक किताब लिखी और इसका नाम तज़किरातु शहादतैन रखा, जिसका मतलब है दो शहादतों का जिक्र। इस किताब में हुजूर ने शहजादा साहिब और आपके शागिर्द मौलवी अब्दुलरहमान साहिब की शहादत का हाल लिखा है और शहजादा साहिब की तारीफ़ करते हुए हुजूर ने एक वाक़या भी लिखा है कि अक्टूबर 1903 को जब आपने ये किताब लिखनी शुरू की तो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हुजूर को सख्त दर्द गुर्दा हो गई। हुजूर कहते हैं, मैंने दुआ की कि या इलाही इस मरहूम के लिए लिखना चाहता हूँ, तो साथ ही इल्हाम हुआ सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, और सुबह से पहले पहले आप तंदुरुस्त हो गए। वाकया शहादत के बाद अहमद नूर काबुली शहजादा साहिब का एक बाल हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम के पास कादियान लाए तो हुजूर ने वो बाल खुले मुंह की एक छोटी सी बोतल में डालकर बंद कर दिया और बोतल धागे से बांधकर बैतुद्दुआ की खूंटी से लटका दी। हुजूर इसके मुतालिक फरमाते हैं, एक बाल इनका इस जगह पहुँचाया गया जिससे अब तक खुशबू आती है और हमारे बैतुद्दुआ के एक गोशे में लटका हुआ है। शहजादा साहिब के मुतालिक लिखते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मरहूम ने मेरी जमात को एक नमूना दिया। एक और जगह आपने लिखा है, और जैसा कि इनका चेहरा नौरानी था ऐसा ही इनका दिल मुझे नौरानी मालूम होता था और दर हकीकत वो दीन को दुनिया पर मुकदम रखता था। इसकी ईमानी कुव्वत इस कदर बढ़ी हुई थी कि अगर मैं इसको एक बड़े पहाड़ से तशबीह दूँ तो मैं डरता हूँ कि मेरी तशबीह नाकिस हो। एक दफ़ा आपके मुतालिक हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल लतीफ़ कहने को तो मारा गया मगर यकीनन समझो कि वो ज़िंदा है और कभी नहीं मरेगा।